I'm not. Yeah. Prabhupada Paramahansa Prayujagacharya Satarachala Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhaktivedanta Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pada Paramahansa Prayujagacharya His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sarasati Goswami Prabhupada Maharaj Ki Sri Sri Gonitai Ki Sri Sri Radha Girdhari Ki Sri Jagannath Swadar Balaram Ki Sri Sitaram Lakshman Hanuman Ki Ram Nami Mahavutsav Ki Ram Nami Mahavutsav Ki Iskar Mira Rodi Yatra Ki All glories to the Samu Devori All glories to the Samu Devori All glories to the Samu Devori Adhani Shri Guru and Shri Ganga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. तो जैसे आप जानते हो, आज बहुत ही शुभ दिन है. आज रामनामी या वो शुभ दिन जबकि परम भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर चेतन युग के आरंभ में. तो रामचंद्र जी के विषय में आप रामचरितमानस से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो. तो वाल्मीकि जी की भी रचना है. प्रभुपाद जी ने कहा था वाल्मीकि जी की रचना ज्यादा प्रमाणिक है, ऑथोराइज. उन्होंने कहा था कि तुलसीदास की रचना में थोड़ा मायावादी प्रभाव है. और श्रीमद् भागवत में संक्षेप में दो अध्यायों में ही पूरी रामायण को प्रस्तुत किया गया है. आप कहोगे रामायण है, इतना अधिक ज्ञान है रामचंद्र जी के विषय में, भागवत में केवल दो अध्याय में क्यों? भागवत में अगर आप पढ़ो तो केवल दो अध्याय हैं नौवे स्कंद में, दसवां अध्याय और ग्यारहवां अध्याय, जिसमें भगवान रामचंद्र जी के विषय में गहराई के साथ चर्चा की गई है. क्योंकि इस अध्याय में, दसवें अध्याय में शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा कि इस विषय में अनेक संतों ने रचना कर दी है, तो इसलिए मैं केवल संक्षेप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करूंगा. जैसे कि आप जब चैतन्य अक्षर संहिता पढ़ते हो तो देखोगे उसमें कि कई लीलाओं के विषय में कृष्णदास काविराज जी ने बड़े संक्षेप रूप में प्रस्तुत किया है. क्योंकि कृष्णदास काविराज जी ने कहा है कि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में गहराई से इस लीला का वर्णन किया है, तो मेरे को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता नहीं. मैं संक्षेप में ही इस लीला का वर्णन करूंगा और गहराई से आप चैतन्य भागवत पढ़ सकते हैं. उसी प्रकार रामचंद्र जी की लीलाओं के विषय में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अनेक और संतों ने इन लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए मैं सिर्फ संक्षेप में ही इसका वर्णन करूंगा. अब मुझे 9:45 बजे तक जरूर निकलना है यहां से, क्योंकि बड़े मंदिर में ऐसे अभिषेक तो 9 बजे शुरू हो रहा है पर भक्तों का अभिषेक 11 बजे से शुरू हो रहा है, और इस समय वहां कोई 15-20 सन्यासी और प्रभुपाद जी के शिष्य हैं. तो मैं कहते हैं वेदव्यास में आ जाए 1 बजे आने, 11 बजे आने राम कथा के लिए. ठीक है, तो यहाँ ही रहेंगे. अगले साल से आप लोग क्या कर सकते हो, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की छोटी मूर्तियां रख सकते हो जो सारा साल सो सकती हैं, पर रामनामी के अवसर पर आप उन्हें आगे लाकर उनका अभिषेक कर सकते हो. तो भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसमें भगवान राम के विषय में भगवान राम के प्रकट होने का वर्णन किया गया है। श्लोक बोर्ड में लिखा हुआ है तस्यापि भगवान एषां साक्षात् ब्रह्ममाया हरी अंशंशेन चतुर्धागपुत्रत्वं प्रथिता सुरे रामा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संयाय तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशं शेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रतिथा सुरे रामान् लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति संयय दशपि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशं शेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रतिथा सुरे रामान् लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति संयय दशपि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशं शेन चतुर्धागा पुत्रत्वं पतिथा सुरे रामान् लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संयय
लक्ष्मण भरत इति संज्ञया
माता जी
भरत महाराज
जोड़ से नहीं है
अभी अभी
ये ले लो प्रभु ये माइक वो ज्यादा क्लियर नहीं है ना इतना जोर से नहीं है थोड़ा सा
भगवान भगवान ईश विषभि साक्षा प्रत्यक्ष ब्रह्ममय परब्रह्म या परम सत्य हरि भगवान हंसंसेन पूर्ण अंश के अंश से चतुर्धा चार प्रकार के विस्तार अगार स्वीकार किया पुत्र दत्तम पुत्र बनना प्रार्थित प्रार्थना किए जाने पर सुरहि देवताओं के द्वारा ताम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण लक्ष्मण भरत भरत शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न नामों से अनुवाद तात्पर्य शिष्यमत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रभुपाद महाराज के देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में चार स्वरूपों में प्रकट हुए। तात्पर्य भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर के विष्णु तत्व है। भगवान अनेकानेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अनटम अच्युतम अनादि अनंत रूपम यद्यपि वे सभी एक ही है किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पांचवें अध्याय के 39वें श्लोक में इनकी पुष्टि की गई। रामादि मूर्ति शुकला नियमेन कृष्णम भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है यथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य है। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं के प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने।
हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरन्मीलितानि येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोविष्टं अन्तमेव भूतले स्वयं रूपा कदामयं कदापि स्वापरमिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सहजतं सहागनारघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं व्रजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता शिवशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंस राधा कंस नमोस्तुते सप्त कंचना गौरवी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द
हरे कृष्ण हरे कृष्ण
तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशम सेन चतुर्धागत पुत्र वर प्रतिथा सुय राम लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न इति समय। तो ये श्लोक जैसे हम कह रहे थे भागवतम के नौवें स्कंद के दसवें अध्याय में प्राप्त होता है। वैसे तो आप बचपन से ही खास करके भारत में रामायण और महाभारत के विषय में लीलाएं सुनते आए हो, है कि नहीं? और आजकल भी शाम के समय जुहू में कथा हो रही है, आप लोग यहाँ भी शायद हो रही है, तो कई लोग यहाँ आते हैं, कई लोग जुहू में जाते हैं। और भारत में ही नहीं पर कई मुसलमान देशों में भी, जैसे इंडोनेशिया है, वहाँ भी हर साल रामायण मनाते हैं, क्योंकि एक समय पूरे विश्व में वैदिक संस्कृति का प्रभाव था। और जैसे मैं कह रहा था, भागवतम में केवल संक्षेप रूप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत में 11वें अध्याय की समाप्ति पर शुक्रदेव गोस्वामी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति सावधानी से भगवान राम की लीलाओं के विषय में सुनेगा तो उसके हृदय में जो द्वेष की बीमारी है वो दूर हो जाएगी। आप लोगों के हृदय में द्वेष की बीमारी है या नहीं? तो शुक्रदेव गोस्वामी जी कहते हैं द्वेष की बीमारी और भौतिक आकर्षण समाप्त हो जाएगा अगर हम ध्यान से इस भागवतम का वर्णन सुनेंगे जिसमें कि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। तो जो श्लोक हमने पढ़ा आज उसमें शुक्रदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर, आप भागवतम के दसवें स्कंद में पढ़ते हो कि देवताओं ने प्रार्थना की थी कि भगवान को प्रकट होना चाहिए, भगवान फिर प्रकट हुए। देवताओं ने प्रार्थना की थी भगवान प्रकट हो, क्योंकि हिरण्यकश्यपु के कार्य से सब दुखी थे, तो भगवान प्रकट हुए सिंहदेव जी के रूप में। अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना की थी कि भगवान आपको स्वयं प्रकट होना चाहिए, तो ही कलयुगा का उद्धार होगा, तो भगवान प्रकट हुए किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो यहां भी आप देखते हो कि जो देवता हैं उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान स्वयं आप प्रकट हो। रावण शब्द का अर्थ है जो हर व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है। प्रभुपाद जी भागवत में समझाते हैं, रावण मीन्स वन हू मेक्स अदर्स क्राई, जो दूसरों को रुलाता है। तो रावण का क्या कार्य था? सब प्रकार के यज्ञों को नष्ट करना, यज्ञों को रुकवा देना। तो देवताओं की क्या इच्छा थी कि करम परम भगवान स्वयं प्रकट हो। और भगवान कब प्रकट हुए थे? रामचंद्र जी के रूप में, श्वेत युग के आरंभ में। आजकल नहीं, श्वेत युग चला था 12 लाख सालों के लिए, उसके पश्चात द्वापर युग आया लगभग 8 लाख सालों का। तो भगवान राम प्रकट हुए थे पृथ्वी पर 20 लाख साल पूर्व, और आज भी भक्तजन बड़े उत्साह से रामचंद्र जी की लीलाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं। आखिर हम सबका भाव क्या होना चाहिए कि हम सदा भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, है ना? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नवदा भक्ति के विषय में प्रहलाद महाराज जी ने कहा है सदा विष्णु का स्मरण करो। तो विष्णु का स्मरण कैसे करते हैं? उनकी लीलाओं का, रूप का, शिक्षा का। कुछ हफ्ते पहले, कोई 2 हफ्ते पहले, ये भारत की बड़ी पत्रिका है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें एक फुल पेज का आर्टिकल एक हिंदू ने लिखा था, जिसमें उसने कहा कि हमारा रिसर्च ये कहता है कि राम और कृष्णा कभी प्रकट ही नहीं हुए। वो बदमाश कहता है कि राम और कृष्ण प्रकट ही नहीं होए, कोई हमारे पर प्रभाव नहीं मिल रहा तो ये लोग बड़ी दुख की बात है कि इस देश में भी लोग ये नाम कमाने के लिए या रिश्वत के कारण या क्या, बड़ी बड़ी अखबारों में, ये 10 दिन पहले ही मैंने पढ़ा था, उसने पूरा लेख तो मैंने नहीं पढ़ा जिसमें उसने कहा है रिसर्च शोज राम एंड लक्ष्मण, राम एंड कृष्ण नेवर एग्जिस्टेड। उसने कहा कि हमारा भौतिक रिसर्च ये दिखाता है कि राम और लक्ष्मण, राम और कृष्ण कभी प्रकट ही नहीं हुए ये सब लोगों की कल्पना है। तो और ये कोई मुसलमान देश में नहीं कहा जा रहा, ये आपके हिंदुस्तान में कहा जा रहा है बड़े अखबार। तो ये है हमारा दुर्भाग्य। भगवान राम प्रकट हुए थे चेत युग के आरंभ में, और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की स्थापना कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी ये स्थापना कर रहे हैं कि भगवान राम जो कि प्रकट हुए थे अपने भाई लक्ष्मण, भारत, शत्रुघ्न के साथ, ये सब कौन है? विष्णु तत्व, जीव तत्व नहीं। विष्णु तत्व का अर्थ है कि वो स्वयं भगवान है। भगवान अपना विस्तार करते हैं अनेक रूपों में, और यहां कहा जा रहा है कि भगवान, उनके भाई सब के सब विष्णु तत्व हैं। यही लक्ष्मण जी प्रकट हुए थे बालराम जी के रूप में, नित्यानंद जी के रूप में। कुछ दिन पहले आप भक्तों ने शायद रामानुजाचार्य का आविर्भाव मनाया था कुछ 5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले। हाँ, तो रामानुजा को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। उन्हें यह नाम रामानुजा दिया गया था क्योंकि वो भगवान राम के बहुत बड़े उपासक थे, और रामानुजा की अनेक प्रसिद्ध लीलाएं हैं। उन्होंने शुरू में तो एक रामानुजाचार्य प्रकट हुए थे पृथ्वी पर लगभग 1000 साल पूर्व। चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे लगभग 550 साल पूर्व, और माध्वाचार्य प्रकट हुए थे लगभग 700 साल पूर्व, 750 साल, और शंकराचार्य प्रकट हुए थे 1500 साल पूर्व। तो शंकराचार्य प्रकट हुए थे, उन्होंने मायावादी सिद्धांत की स्थापना की थी। तो रामानुजाचार्य शुरू में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हालांकि वह 16 साल की छोटी आयु में ही संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे, पर संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो एक मायावादी गुरु के आश्रम में गए, क्योंकि वो सीखना चाहते थे मायावादियों के क्या क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो कई बार उन्होंने अपने गुरु को आर्ग्यूमेंट में चर्चा करते हरा दिया था, इतना तक एक बार उनके गुरुजी ले गए थे शिष्यों को एक जंगल में पिकनिक में, इस योजना के साथ कि रामानुजाचार्य को मार दिया जाएगा। पर फिर रामानुजाचार्य को पहले ही सूचना मिल गई थी उनके एक रिश्तेदार थे गोविंदा के द्वारा, तो वहां से वो चल पड़े थे आगे। तो रामानुजाचार्य थे, उन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है उनके विषय में, कई हैं। एक समय रामानुजाचार्य एक जब यात्रा कर रहे थे तो एक शहर में पहुंचे जहाँ की उनके साथ उनके दो शिष्य थे। तो पहले तो उनके दो शिष्य थे उस शहर में, एक था धनी एक था गरीब। शिष्यों ने कहा कि हाँ, आपके रहने की सुविधा उस धनी शिष्य के घर में करेंगे। पर धनी शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, और जब वो उनके रामानुजा के शिष्य आए थे धनी शिष्य से ये चर्चा करने के लिए कि हमारे गुरुजी आना चाहते हैं आपके घर में रहने के लिए, उसने उन शिष्यों को की तरफ खास देखा भी नहीं, खास परवाह भी नहीं की। तो जब रामानुजा को पता लगा कि इस शिष्य ने ان کی ان دو بھکتوں کی بالکل پرواہ بھی نہیں کی. انہوں نے کہا میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا, جو ویکتی ویشنو کو عزت نہیں دیتا اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا. پھر وہ گئے رہنے کے لیے ایک بالکل غریب شیشے کے گھر میں, جو کہ آدھا دن بھیک مانگتا تھا اور پھر جو چندہ بھیک مانگ کر لاتا تھا اس چندے کو وہ چڑھاتا تھا وشنو کی سیوا میں. تو جب رامانوجاچاریہ ان کے گھر میں پہنچے تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے استھان کچھ نہیں تھا گھر میں کھانے کے لیے. تو ان کی پتنی نے گرو جی کا تو سواگت کیا, پر پیچھے کے دروازے سے وہ پڑوس کے بنیے کی دکان میں چلے گئے. بنیے کی وہ بہت غریب تھے, بھیک مانگ کر گھر کو چلاتے تھے. تو یہ لڑکی اس کی پتنی تھی بہت خوبصورت, اور جو وہ شہر کا جو بنیا تھا اس کی بری نظر تھی اس کی پتنی پر. تو اس کی پتنی گئی اس دکان سے گرو جی کے لیے سب سویدھائیں پرساد بنانے کے لیے لانے کے لیے. تو اس کے پاس تو پیسہ نہیں تھا, پتی بھیک مانگ کر لاتا تھا سارا دن. پتنی نے کہا مجھے جو چاہیے دے دو, میں رات کو آؤں گی تمہیں سنتوش کرنے کے لیے. تو انہوں نے سب بڑی بھوجن کر کی تیاری کی. جب پتی لوٹا بھیک مانگ کر اس نے کہا ارے اتنا اچھا بھوجن, یہ سب سویدھا کہاں سے آئی؟ تو رامانوجا کو اس کو انہوں نے پرساد کھلایا, تو پورا پرساد نہیں کہا تھوڑا بچ گیا تھا. تو پتی نے پوری کتھا سنائی, جب گرو جی آئے تھے میرے پاس کوئی سویدھا نہیں تھی, تو میں نے اس بنیے کو کہا تم جو دینا دے دو اور میں رات کو آؤں گی تمہارا ساتھ رہنے کے لیے. تو پتی بڑا آشچریہ ہوا ان کی پتنی کی شردھا اور پوترتا دیکھ کر. تو رات پھر وہ لے گئی وہ رامانوجاچاریہ کا بچا ہوا پرساد. وہ پرساد جب اس پاپی نے کھایا ایسا ہردے شدھ ہو گیا کہ اس نے بھی بری نیت بالکل چھوڑ دی اور وہ بھج بن گیا. تو بھگوان رام پرکٹ ہوئے تھے, کیسے پرکٹ ہوئے تھے؟ اپنے تین بھائیوں کے ساتھ. وہ سب کے سب ہیں وشنو تتوا. تو برہما سمہیتا میں کہا گیا ہے ادویتا اچوتا منادی انانت روپم. پراپا جی اس شلوک کا ورنن کر رہے ہیں اس تاتپری میں. تو یہ بڑا پرسدھ شلوک ہے جس میں برہما جی کہتے ہیں بھگوان کے انیک گنوں میں ایک گن ہے ادویتا. ادویتا کا ارتھ ہے کیونکہ بھوتک دھیے اور آتما میں کوئی انتر نہیں, ان کا دھیے جو ہے بالکل ادھیاتمک ہے. اچھوتم کبھی وہ غلطی نہیں کرتے. انانت روپ بھگوان اپنے آپ کو انانت روپوں میں پرکٹ کرتے ہیں. آپ بھوتک اندریوں سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بھگوان کس کس روپ میں پرکٹ ہوں گے. بھگوان ورا کے روپ میں پرکٹ ہوئے تھے, مچھلی کے روپ میں, نرسنگھ دیو کے روپ میں, انانت روپ. تو یہاں پراپا جی ایک اور برہما سمہیتا کے شلوک کا اپیوگ کرتے ہیں رمادی متیشو کلنیا مین اتھن. یہ بھی بڑا پرسدھ شلوک ہے اور پراپا جی نے اسی رام نامی کے اوسر پر آج سے لگ بھگ 35 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا ہوائی میں, اور پراپا جی نے وہ لیکچر آرمبھ کیا تھا اس برہما سمہیتا کے شلوک کے دوارا رمادی متیشو کلنیا مین اتھن. کیونکہ اس شلوک میں پراپا جی نے کہا رمادی شبد کا ارتھ ہے بھگوان رام. بھگوان پرکٹ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو پرکٹ کرتے ہیں انیک روپوں میں, جنہیں ایک ہے بھگوان رام. تو ویسے تو آج کے واتاورن میں کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھگوان ہیں, ہے نا, تھوڑا سا چمتکار دکھاتے ہیں تو بھارت میں بھگوان بن جاتے ہیں. بھارت میں بھگوان بنا جا زیادہ احسان ہے دوسرے استھانوں پر. تھوڑا سا چمتکار دکھاؤ اور بھگوان بن گئے. پر بھگوان جب پرکٹ ہوتے ہیں دیویا لیلا پرکٹ کرتے ہیں, جیسے بھگوت گیتا بھگوان نے کیا کہا اس وشے پر جنما کرما چا میں دیویم. میرا پرکٹ ہونا اپرکٹ ہونا دونوں ہی دیویم ہیں. اگر دیویم نہیں ہوتا تو 20 لاکھ سال پورو کوئی اس وشے کی چرچا کرتا, کوئی اس وشے کی چرچا نہیں کرتا. भगवान का आना प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही बिल्कुल दिव्य माना जाता है। तो यहां सबसे पहले तो इस श्लोक में ये स्थापित किया जा रहा है कि परम भगवान प्रकट हुए भाइयों के साथ, और ये सब के सब क्या है, विष्णु तत्व सच्चिद आनंद विग्रह। ये भगवान के अनेक गुण हैं जिनमें एक है सच्चिद आनंद। तो परम भगवान को हमें किसी रूप से साधारण व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए। जैसे कई लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं पर प्रसिद्ध देवता के रूप में, परम भगवान के रूप में नहीं। और भगवान ने गीता में क्या कहा, यदा यदाही धर्म से किनारे भवति भारत। अलग अलग समय में मैं प्रकट होता हूँ, किस लिए, किस लिए, परितया आया साधु नाम विनिश्चित दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय सुमवामी युगे युगे। तो परीक्ष शुकदेव गोस्वामी जी ये स्थापित करने के पश्चात कि भगवान राम स्वयं भगवान हैं, विष्णु तत्व और ब्रह्म संहिता में भी यह स्थापित किया जाता है। आगे जाकर वो कहते हैं कि भगवान राम की लीलाओं के विषय में आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो, और ये कब कह रहे हैं, 5000 साल पूर्व आप जब भागवतम को पढ़ते हो तो इसमें पढ़ोगे कई प्राचीन लीलाएं। जैसे यहां जो लीला बीती थी तृतीय के आदम में 20 लाख साल पूर्व वो प्रकट की जा रही है। आप जैसे छठे स्कंद में आजमिल की कथा पढ़ते हो तो आजमिल की कथा जब आरंभ करने से पहले शुक्रदेव गोस्वामी ने क्या कहा, हमारे प्राचीन पुराणों में इस कथा की रचना है। फिर आगे जाकर उन्होंने आजमिल की कथा की रचना की, तो मतलब कि 5000 साल पूर्व भी ये माना गया था क्या कि ये जो आजमिल की कथा है उससे भी ज्यादा पुरानी है, तो मतलब कि कम से कम 7-8-9-10 हजार साल पुरानी हो सकती है। तो यहां इसी प्रकार शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्योंकि आपने ये लीला बार बार सुनी है इसके लिए मैं केवल संक्षेप में ही इस लीला का वर्णन करना चाहता हूं। तो आप सब इन लीलाओं के विषय में सुनते आए हो पर आध्यात्मिक लीलाओं के विषय में, आध्यात्मिक चर्चा और भौतिक चर्चा के विषय में क्या अंतर है। भौतिक विषय की चर्चा आप 1-2-3 बार सुन सकते हो फिर थक जाते हो, और आध्यात्मिक विषय की चर्चा आप रोज सुनो जब भी आप थकोगे नहीं। जैसे आप रोज हरि नाम का जाप करते हो आप थकते नहीं। इस विषय में नारद मुनि जी एक उदाहरण देते हैं 34 स्कंद में, वो कहते हैं जैसे कि आप रोज ताजी हवा को अनुभव करते हो तो आपको कभी ये महसूस होता है ये तो हमने कल भी किया था तो आज बासी है नहीं। आप कमरे में रात को सोते हो तो दिन के समय आपका क्या इच्छा रहती है, आप कमरे के बाहर निकलो ताजी हवा अनुभव करने के लिए। हालांकि आपने कल भी किया था, परसों भी किया था, तरसों भी किया था, बचपन से करते आ रहे हो, आप उसका ताजापन महसूस करते हो। उसी प्रकार नारद मुनि जी कहते हैं कि आध्यात्मिक विषयों को जितना आप सुनोगे उतना ही कम है। और जैसे शुक्रदेव गोस्वामी जी ने आगे जाकर कहा है जो व्यक्ति ध्यान से भगवान रामचंद्र जी की लीलाओं के विषय में सुनेगा उसके हृदय में जो देश द्वेष की भावना है वो समाप्त हो जाएगी। तो भगवान राम प्रकट हुए थे अयोध्या में, ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से 400-500 मील की दूरी पर है। पिता का नाम था दशरथ और भगवान के अनेक गुणों के विषय में प्राचीन मुनि जी क्या कहते हैं, ऐश्वर्य समाग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्यावश्य सन्न भग इतना। तो भगवान जब प्रकट होते हैं दिव्य लीला प्रकट करते हैं और जो 6 गुण हैं वो भी अपने व्यवहार में प्रकट करते हैं। जैसे भगवान ने शिव जी के धनुष, शिव जी का जो धनुष था इतना भारी है कि उसके उठाने के लिए भागवतम के अनुसार 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। कितनी? 300। इतना भारी। सीता के लिए पति का समय था चुनने का, और भगवान राम ने ये बहुत भारी धनुष जिसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी इतने आसानी से तोड़ा, जैसे कि एक हाथी एक गन्ने को तोड़ता है। अब हाथी को गन्ना दो को कुछ कठिनाई होती है तोड़ने में, तो भगवान राम ने बड़ी आसानी से उस धनुष को तोड़ा। प्रभुपाद जी इस विषय में कहते हैं कि जैसे कि भगवान कृष्ण ने 7 साल की आयु में ही भारी पहाड़ गोवर्धन को उठाया, भौतिक दृष्टि से तो वो असंभव है, पर भगवान कृष्ण ने छोटी आयु में ही उसे उठाया, क्योंकि भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और भगवान के अनेक गुणों में एक गुण यह भी है कि वो किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं क्या, अंगनि यस्य सकलेन्द्र बृद्धिमन्ति, आप किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हो। जैसे भगवान आपके अर्पण किए हुए खाने को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, कैसे? आंखों से और कानों से। तो भगवान ने धनुष को थोड़ा, फिर परशुराम उसे हराया बड़े आसानी के साथ। तो महाराज दशरथ अपने राज्य की जिम्मेदारी अपने बेटे राम को देने जा रहे थे। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, कई कहते हैं 2, प्रभुपाद ने कहा कई कहते हैं 3। तो और उनको उंगली में तकलीफ भी थी। एक समय उनकी एक पत्नी कैकेयी ने उनका सहयोग दिया था कठिन परिस्थिति में, जिसके कारण आभार उनका आभार प्रकट करने के लिए राजा ने कहा था, जो मांगना चाहते हो मांगो मेरे से, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कैकेयी के पुत्र का नाम क्या था? उनकी इच्छा ये थी, वो जब चालाक थी, वो औरतों में कई बार द्वेष तो होता है। तो कैकेयी की इच्छा क्या थी कि राजगद्दी उनके पुत्र को दी जाए। तो कैकेयी ने कहा ठीक समय पर मैं आपसे, मैं केवल उन लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं जिनका भागवतम में वर्णन है। तो उन्होंने कहा था कि मैं ठीक समय पर इच्छा प्रकट करूंगी। तो भगवान राम दशरथ जी की इच्छा थी रामचंद्र जी को राजगद्दी दी जाए, उनके राजा अभिषेक की पूरी तैयारी हो रही थी। और उस समय कैकेयी ने अपने पति को याद दिलाया, आपको याद है आपने वचन दिया था, आज के जमाने में अगर आप लिखित रूप से भी कोई एग्रीमेंट करो उसकी भी कोई कदर नहीं करता, है ना, कोई स्टैंप पेपर पर भी एग्रीमेंट करो कोई कदर नहीं करता। तो प्राचीन समय में केवल क्षत्रियों का वचन ही काफी था। तो अगर महाराज दशरथ चाहते तो बड़ी आसानी से कह सकते थे, कहा कब बोला मैंने, क्या प्रमाण है उसका। अब साक्षी गोपाल की कथा में सुनते हो ना कि जब पिता ने कहा नहीं, जब उस ब्राह्मण ने कहा तो उनके उस धनी व्यक्ति के बेटे ने कहा क्या प्रमाण है, प्रमाण ले कराओ, तो उनको फिर भगवान गोपाल को संग करना पड़ा प्रमाण देने के लिए। तो दशरथ ने तो जब कैकेयी ने याद दिलाया, उनके पास और कोई उपाय नहीं था। हालांकि पूरा अयोध्या सजा हुआ था, बहन बाजे सब तैयार थे, राजगद्दी प्राप्त करने के लिए एक ही दिन था, अगले दिन प्राप्त होने वाला था। और जब भगवान राम को पिता ने बुलाकर ये कहा, क्या कहा, कि मैं ये चाहता हूं कि तुम वन में जाओ, वो कई बहुत होशियार थी। प्रभुपाद जी ने कहा अपने लेक्चर में, प्रभुपाद जी ने कहा कि कई इतनी होशियार थी कि उसने कहा 14 सालों के लिए जाओ, एक दो साल के लिए नहीं। तो प्रभुपाद जी इस विषय में कहते हैं कि उसको चिंता ये थी कि अगर मान लो मेरे बेटे भरत को राजगद्दी दे भी दें तो अगर राम 2-3 साल में लौट जाएगा तो खुद येता करके बेटे को निकाल देगा, वो फिर राजा बन जाएगा। तो उन्होंने कहा लंबे समय के लिए 14 साल, 14 सालों में बेटा ठीक रूप से स्थापित हो जाएगा राजगद्दी में, है कि नहीं। साथ में उन्होंने कहा दूर जाओ, वो ये भी नहीं चाहती थी कि बिल्कुल अयोध्या के बाहर आपका कैंप हो, क्योंकि उसको ये भी डर था कि अयोध्या के बाहर राम जाएंगे वन में या अयोध्या में रहेंगे तो कुछ कुदियता हो सकता है। आप समझते हैं ना, जैसे कई बार कोई जबरदस्ती सरकार को गिरा देते हैं। तो उसने बड़े होशियारी से कहा लंबे समय के लिए जाओ और दूर जाओ। हाँ, तो भगवान राम अगर चाहते तो बड़े आसानी से कह सकते थे, पर पिता दो क्या कहेंगे, अब तो सब तैयारी हो गई है ना। जैसे कई बार भक्तों को कहा जाए कुछ दूसरी सेवा करो तो कहते अरे लोग क्या कहेंगे, बुरा दिखेगा। भगवान राम ने इसकी परवाह की नहीं, और भगवान के 6 गुणों में क्या है, वैराग्य। जैसे भगवान श्री कृष्ण कई बार रासलीला के बीच में एकदम अप्रकट हो जाते थे, तो भगवान राम ने बड़ी आसानी से पिता के आदेश को स्वीकार किया। इस विषय में भागवत में कहा गया है कि जैसे कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है, साधारण व्यक्ति को मृत्यु का भय रहता है, लेकिन साधारण व्यक्ति को यह भय रहता है अरे मृत्यु आएगी, मृत्यु के बाद क्या क्या होगा। पर जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है उसको मृत्यु का भय नहीं रहता, उसे पता है कि आज नहीं तो कल मुझे श्री त्यागना ही है, और क्योंकि मैंने इस जीवन का उपयोग किया है भगवान की सेवा में, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। तो भागवत में इस विषय में कहा गया है कि जैसे कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है बिना चिंता के, उसी प्रकार भगवान राम ने पिता के आदेश को स्वीकार करके तुरंत तैयार हो गए वन में जाने के लिए। और उनके भाई लक्ष्मण ने क्या कहा, मैं भी आपके साथ चलो। सीता महारानी, भगवान की इच्छा नहीं थी कि वो साथ चले, वो पली पली थी राजकुमारी जैसे, पर सीता ने कहा नहीं, मेरे पति का साथ देना है, अगर पति को जंगल में जाकर कठिन स्थिति में रहना पड़ेगा तो मैं भी जाऊंगी साथ। पापा जी कई बार गंधारी का उदाहरण देते थे, धृतराष्ट्र अंधे थे, गंधारी ये नहीं चाहती थी कि उसके पति में इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, तो अपने आंखों को पट्टी पर लगा देती थी कि वो भी अंधी जैसे व्यवहार हो। तो सीता देवी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी जंगल। तो जैसे हमने कहा था, वैसे रामचंद्र जी की मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ है। वो जंगल में गए, भारत महाराज आए थे चित्रकूट तक उन्हें वापस लेने के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया, कहा नहीं नहीं आप शासन करो, आप पूरे देश की देखभाल करो, आजकल आप अयोध्या जाओ तो आपको लगता है कि वो छोटा शहर है, बहुत छोटा है, पर उन दिनों में पूरे विश्व का एक ही राजा था, एक प्रसिद्ध राजा था और कई छोटे छोटे राजे थे, पर वो सारे के सारे प्रसिद्ध राजा के अंडर थे। तो रामचंद्र जी महाराज दशरथ राजा थे पूरे पृथ्वी के, सिर्फ भारत के नहीं, आप सोचोगे सिर्फ भारत के, जैसे मैंने कहा था इंडोनेशिया में भी रामायण को मनाया जाता है हर साल, और आज भी आप जाओ, आज भी हालांकि वो मुसलमान देश है, क्योंकि वहां भी रामायण का इतना गहरा प्रभाव है कि हालांकि वो देश मुसलमान बन गया जब भी उन्होंने रामायण से अपना संबंध नहीं तोड़ा। तो और महाराज भारत गए थे पर रामचंद्र जी वापस नहीं लौटे। उनके भाई भारत महाराज, उनका भाव माता जैसे नहीं था। उनकी मां का कह जाता, भारत ने शासन किया पर कैसे, भगवान के पदुका को अपने सिर पर रखकर, और रहने के लिए क्या क्या, राजा थे, अच्छे कपड़े, सोने के चेन वगैरह पहनने चाहिए थे, है ना, और क्या पहना उन्होंने, पेड़, हाँ पेड़ की छाल से अपने शरीर को ढका, बस पेड़ के छाल से, और खाने के लिए क्या था, जौ, जो कि बनता था गौमूत्र में, आप खाओगे, जौ जो कि गौमूत्र में बनता है, बस, और सादे पेड़ के रस से अपने बालों को ठीक कर देते। तो भारत महाराज ने इस प्रकार शासन किया। तो जब भगवान जंगल में गए, जंगल का जीवन तो शांत जीवन नहीं है, वहां भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रावण आकर सीता देवी जी को ले गए थे। चैतन्य चरितमृत में इस विषय में चर्चा है, जहां कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि जो सीता रावण ले गए थे वो थी माया सीता, असली सीता नहीं। आप कहोगे अरे असली सीता को रावण कैसे ले गया उठाकर, रावण भी देखा जाए थे तो आदम में भक्ति, आप जानते हो जय विजय भगवान के दो द्वारपाल थे, और जब ये कुमारा भाइयों ने वैकुंठ धाम में प्रवेश करने का प्रयास किया, क्योंकि ये नंगे थे, चौकीदारियों ने रोक दिया, आप कैसे जाओगे अंदर नंगे हो, चौके, और कुमार के पास शक्ति थी, उन्होंने अपनी योगिक सिद्धियों के द्वारा शरीर को बड़े होने से भी रोक दिया था। पिता ने कहा था शादी करो आबादी बढ़ाने के लिए, उनकी इच्छा नहीं थी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो कुमारा ने कहा कि तुम योग्य नहीं हो इस सेवा के लिए, हम तुम्हें श्राप देते हैं। जब भगवान अब जो अपने आश्रम में थे लक्ष्मी के साथ, जब उन्होंने सुना कि ये वार्तालाप चल रहा है, जैसे अगर आपके गेट में कोई ऊंचे रूप से कोई बातें करे तो आप सुन लोगे, जाओगे देख लो क्या हो रहा है, क्या झगड़ा हो रहा है, तो भगवान ने आकर देखा, आए देखे क्या हो रहा है। तो कुमार ने जब देखा कि भगवान इतने प्रेम से अपने चौकीदारों से द्वारपालों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये इच्छा प्रकट की हमें श्राप वापस लेना चाहते हैं। और जीवा गोस्वामी के अनुसार, छह गोस्वामियों में सबसे छोटे थे जीवा गोस्वामी, जीवा गोस्वामी अपनी व्याख्या में कहते हैं क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले थे तो उनकी इच्छा थी कि उनके भक्त प्रकट हो, तो इसलिए भगवान अलग अलग समय में प्रकट हुए थे, जिनमें एक था रावण। तो वैसे तो रावण का व्यवहार था हिरण्यकश्यपु जैसे, हिरण्यक्ष जैसे, पर हृदय में क्या थे, वो हृदय में थे वो गहरे ऊंचे कोटि के भक्त। अगर वो ऊंचे कोटि के भक्त नहीं होते तो कहां उन्हें अवसर प्राप्त होता भगवान के साथ लीला प्रकट करने के लिए। भगवान के साथ लीला प्रकट करने का शायद दृश्य के रूप में हो, वो अब मोबाइल फोन बंद करेंगे, वो भी केवल उनके भक्तों को ही प्राप्त होता है। तो भगवान गए थे जंगल में, रावण ने सुना था सीता की खूबसूरती के विषय में, तो रावण आए थे किस प्रकार सीता को किडनैप कर ले गए, पर जैसे हमने कहा वो थी माया सीता, असली सीता को कभी रावण छू नहीं पाया। तो भगवान को पता लगा कि कहाँ है सीता, जटायु ने सूचना दे दी थी। भगवान ने यह भी बताया किस प्रकार पुत्र को उन्होंने जटायु के फ्यूनरल का कितनी अच्छी तरह प्रबंध किया। तो भगवान ने जब जाना था लंका के पार सीता की सुरक्षा के लिए, सागर के किनारे जाकर वो खड़े हो गए थे 3 दिनों के लिए, पर सागर ने रास्ता नहीं दिया। और फिर जब 3rd दिन भगवान ने क्रोधित नेत्रों से देखा तो सागर फिर घबरा गया। और भगवान ने यहां फिर अपनी एक और दिव्य लीला प्रकट की। क्या है वो? भगवान ने अपनी सेना के साथ, भगवान की सेना में कौन थे? केवल बंदर थे, सुग्रीव हनुमान। और इन बंदरों में क्या योग्यता थी? खास योग्यता नहीं थी। बंदरों ने क्या किया? पर्वत की चोटी को फेंका, बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर फेंका, पहाड़ों की चोटी को, पर्वत की चोटी को और पत्थरों को फेंका। अगर आप सागर के किनारे जाकर पत्थर को फेंकोगे तो आप क्या अनुभव करोगे? डूब जाते हैं, है ना? और जब भगवान ने पत्थर फेंके और पर्वत की चोटियों को फेंका तो वो डूबे क्या? नहीं, वो तैरने लगे। तो इस विषय में प्रभुपाद जी भागवत में समझाते हैं जिस प्रकार अनेक ब्राह्मण जो लोग हैं वो भी तैर रहे हैं आकाश में, कभी उनका एक्सीडेंट होता है नहीं। बौद्धिक संसार में हवाई जहाज आकाश में उड़ते हैं पर कई बार उनका एक्सीडेंट होता है, कई बार दुर्घटनाएं बीतती हैं। तो भगवान के लिए पत्थर फेंकना और फिर पत्थरों का डूबना नहीं, कोई असंभव कार्य नहीं है। रावण का अर्थ है जो कि दूसरों को कष्ट देता है, रुलाता है। और रावण के कितने मूड हैं? रावण दुष्ट था। देवताओं ने प्रार्थना क्यों की? कि भगवान आप प्रकट हो जाओ, आपके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि रावण ने ब्राह्मणों का जीना लगभग असंभव बना दिया था। जब यज्ञ होते थे उनको नष्ट करवा देता था। पंडित जी बैठते थे यज्ञ करने, तो उसे तो चट्टी पेशाब फेंक देते थे और यज्ञ बुरा खराब हो जाता था। जैसे आप पढ़ते हो भागवत में, महाराज वेना राजा थे, उन्होंने सब प्रकार का यज्ञ समाज में रुकवा दिया था। अंत में ब्राह्मणों के पास कोई उपाय नहीं था और उनको श्राप दिया। तो भगवान जब गए थे जंगल में, भारत महाराज उनके भाई आए हुए थे उनको वापस ले जाने के लिए, पर वो नहीं लौटे। एक तरफ से पिता के आदेश का पालन करना चाहते थे और दूसरे तरफ से रावण को भी अंत में हराना चाहते थे, मारना चाहते थे। तो भगवान की सेना में कौन थे? केवल वानर, वानरों की सेना थी। और जैसे आप भागवत में पढ़ते हो, केवल भगवान राम और उनके लक्ष्मण में, भाई में, लक्ष्मण में धनुष चलाने की भी योग्यता थी, बाकी वानरों में तो कोई योग्यता नहीं थी। केवल पर्वत की चोटी, पर्वत के उसको फेंक, बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर फेंक पाए बस। और भगवत में कहा जाता है 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक है भौतिक, दूसरी है आध्यात्मिक। तो देखा जाए भौतिक दृष्टि से रावण की सेना में हर प्रकार की सुविधा थी, उनके पास हर प्रकार के आधुनिक हथियार थे। आप सोचते हो कि आज के हथियार ज्यादा एडवांस्ड हैं पुराने हथियारों के, आपको आश्चर्य होगा। प्राचीन समय जो में जो हथियार थे उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे ब्रह्मास्त्र जो रावण जो था केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाता था, भगवान राम ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की कैसे ये पर्वत की चोटियों को फेंका, पत्थर फेंके, डूबने के बजाय वो तैरने लगे। और भगवान अपनी वानर की सेना के साथ सागर के पार गए और बड़े आसानी के साथ रावण को हराया। रावण का क्या भाव था, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाया जाए। जैसे हमारे वैज्ञानिक आजकल हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अभी भ्रमण में यात्रा करेंगे, स्पेस ट्रैवल, तो लोग भी सोचे हाँ शायद एक दिन आएगा हम दूसरे लोकों में जाकर रह सकेंगे। प्रभुपाद जी ने इस विषय पर एक पत्र, एक ग्रंथ लिखा था, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट, जिसमें प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये जो भावना है आज की भौतिकवादी प्रजा की कि हम दूसरे लोकों में जाकर रहें, ये भावना तो प्रभुपाद जी कहते हैं रावण की भी थी। पर अगर आप दूसरे लोकों में पहुंचना चाहते हो तो विज्ञान के सहारे नहीं, कोई भौतिक हवाई जहाज के सहारे नहीं, कोई सीढ़ियों के सहारे नहीं, पर आपको आध्यात्मिक रूप से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो युद्ध में रामचंद्र जी की वानर की सेना ने विजय प्राप्त की। तो भगवान राम जब लौटे सीता को लेकर लक्ष्मण के साथ अयोध्या में, भारत और सारे मंत्रियों ने बड़े आदर के साथ क्या किया, उनका स्वागत किया। बड़े आप पढ़ते हो भागवत में किस प्रकार भगवान भारत महाराज, उनके सारे मंत्री, और वो जब शासन भी कर रहे थे किसके बिहाव पर, भगवान राम की तरफ ही बिहाव पर शासन कर रहे थे। तो भगवान राम जब लौटे तो पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया, अयोध्या सजा हुआ था। अब लोग दिवाली मनाते हो, वह अयोध्या सजा हुआ था और भगवान राम का शासन आरंभ। आज भी लोग राम राज्य की चर्चा क्यों करते हैं, आज भी लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं। आप कई बार सुनते हो गए आपके राजनीतिक नेता कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए, हमको वोट दो हम तुम्हें राम राज्य देंगे, क्योंकि राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का। कहा गया है कि जब भगवान राम का राज्य चल रहा था कोई भौतिक शरीर नहीं, कोई भौतिक कष्ट नहीं। जैसे कि कहा जाता है सात प्रकार के कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। शारीरिक कष्ट, प्रकृति द्वारा कष्ट और मन का कष्ट। तो भागवत में कहा गया है कि तीनों कष्ट नहीं थे, ना शारीरिक कष्ट, ना मानसिक कष्ट, ना प्रकृति द्वारा कष्ट। शरीर आपको अनेक रूपों से कष्ट देता है, जन्म मरण, बुढ़ापा, बीमारी। फिर प्रकृति द्वारा अनेक रूपों से कष्ट भुगतना पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी अकाल तक। फिर दूसरे व्यक्ति द्वारा कष्ट। पर महाराज भगवान राम के राज्य के समय कोई ना कोई भौतिक शरीर कष्ट, ना मानसिक कष्ट, इसके अलावा कोई बुढ़ापापन नहीं। अगर आपको कहो कि आज किसको बोलो हम बुढ़ापेपन से आपको बचा सकते हैं, वो तो कुछ भी कीमत भर लेगा। तो कोई बुढ़ापेपन भी नहीं, इसके साथ कोई कष्ट नहीं, कोई भय भी नहीं। आजकल तो जिस बिल्डिंग में जाओ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, है ना, हमारे मंदिर में भी कोई 50-30 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, पर किसी प्रकार का भय नहीं, और मृत्यु का समय भी आप खुद चुन सकते हो। और अगर आप आपको मृत्यु नहीं चाहिए तो मृत्यु से भी आप बच सकते हो। अगर आज आप किसको ये छूट दो आज के जमाने में, तो कोई मृत्यु को स्वीकार करेगा? नहीं। तो ये सब प्रकार की सुविधा थी और सागर भरे हुए थे पानी के साथ, पेड़ों में फल था, पृथ्वी से अन्न का उत्पादन हो रहा था, हर प्रकार का सुख था समाज में, और जो प्रजा थी अत्यंत सुखी थी। रामचंद्र जी शासन कर रहे थे, उसने अपने भाइयों को भेजा था विश्व के अलग अलग स्थानों में युद्ध करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए, और रामचंद्र जी ने और सीता जी ने फिर से अपने वैराग्य का भाव प्रकट किया। समाज में चार प्रकार का वर्ण होना चाहिए और चार प्रकार के आश्रम, वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भगवद गीता के 18वें अध्याय में आपको इन चार वर्णों की जिम्मेदारियों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मणों का क्या गुण होना चाहिए, समो दमो तमो सोचम शांति रजम एवच ज्ञानम विज्ञानम अस्ति ज्ञान ब्रह्म कर्म सुभागद, और क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है, समाज की सुरक्षा और देश की सुरक्षा, बूढ़ी व्यक्तियों की सुरक्षा, स्त्रियों की, बच्चों की। वैश्यों का क्या कर्तव्य है, खेती बाड़ी करें, गायों की सुरक्षा, धंधा करें। शूद्रों का कर्तव्य है दूसरे तीन वर्णों का सहयोग दें, जैसे आपके पैर पूरे शरीर को उठाते हैं। तो रामचंद्र जी का शासन चल रहा था, उन्होंने और सीता ने अपनी सारी संपत्ति बांट दी किसे, ब्राह्मणों को। भगवान राम ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा जितनी जमीन चाहिए मांगो मेरे से। ब्राह्मणों ने कहा हमें उतना ही दो जितना की आवश्यक है, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। अगर आज आप लोगों को ये छूट दो मांगो जितनी जमीन चाहिए मीरा रोड में या बॉम्बे में, तब क्या कहेंगे, जितना दे सकते हो जितना मिल सकते हो उतना बोलेंगे। तो राम राज्य का स्मरण क्यों किया जाता है आज तक, क्योंकि भगवान राम के शासन के समय समाज में किसी प्रकार क्लेश नहीं था, कष्ट नहीं था, और हालांकि हर व्यक्ति को ये छूट दी गई थी कि आप मृत्यु के समय चुन सकते हो, हर व्यक्ति चुनता था। किसी ने ये नहीं योजना की ये नहीं नहीं हम तो कभी झुकना नहीं चाहते मृत्यु के समय। तो हालांकि ये लीला बीती थी त्रेता युग के आरंभ में, पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो वातावरण था समाज में वो था सत्ययुग का, क्योंकि पूरी प्रजा भगवान राम की उपासना कर रही थी। भगवान राम शासन कर रहे थे इस भाव से कि पूरी प्रजा उनकी औलाद है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को पालता है, उस प्रकार भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी औलाद को मानते हुए उस प्रकार से शासन कर रहे थे। आज के वातावरण में जब आप इस विषय में पढ़ते हो सुनते हो, तो आप क्या देखते सोचते हो कि अगर ऐसा वातावरण आज भी होता तो लोग कितने सुखी होते। आज तो चापलूसी करके किसी प्रकार से कोई नेता बन जाता है, ना उसको किसी की प्रजा की चिंता रहती है, यही चिंता रहती है कि अपना जेब कैसे भरा जाए। पर भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी औलाद जैसे पाल रहे थे, एक ब्राह्मण था जो रोज कई थे, खास करके एक ब्राह्मण रोज भगवान राम का दर्शन लेकर ही अपना भोजन स्वीकार करता था। तो भगवान राम दो हफ्ते के लिए गए थे अयोध्या के बाहर, तो दो हफ्तों के लिए इस ब्राह्मण ने कुछ खाया नहीं। तो जब भगवान राम लौटे तो उनके भाई लक्ष्मण ने कहा, ये ब्राह्मण दो हफ्तों के लिए भूखा था, इसने कुछ नहीं खाया। तो भगवान राम ने क्या किया, उन्होंने अलमारी के अंदर उनकी एक मूर्ति थी जो महाराज इक्ष्वाकु के समय से जिसकी उपासना की जा रही थी, वहां भगवान राम प्रकट हुए थे महाराज इक्ष्वाकु की बरादरी में। और भगवद गीता के विषय में भगवान क्या कहते हैं, इमाम पर प्रप्तम इमान राजस्व विदु, मैंने ज्ञान दिया था सबसे पहले किसे, सूर्य के देवता, क्या था नाम, विवास्वान। विवास्वान से नाम ये ज्ञान किसको पहुंचा, महाराज इक्ष्वाकु को। तो भगवान राम प्रकट हुए थे महाराज इक्ष्वाकु की बरादरी में, और महाराज इक्ष्वाकु के समय से इस मूर्ति की उपासना की गई थी। पर जब भगवान राम पृथ्वी पर थे तो उन्होंने ये मूर्ति को रख दिया था अलमारी में। तो जब लक्ष्मण ने कहा कि इस ब्राह्मण ने दो हफ्ते से कुछ खाया नहीं है क्योंकि आपके दर्शन के बिना वो कुछ खाता नहीं, तो भगवान राम ने अपनी ही मूर्ति निकालकर उस ब्राह्मण को कहा, इस मूर्ति और मेरे में कोई अंतर नहीं। तो हम जब भगवान के आचार विग्रह की उपासना करते हैं तो हमें ये पता रहना चाहिए कि इस आचार विग्रह और भगवान में अंतर है, कोई अंतर नहीं। जो मायावादी विचार के व्यक्ति हैं वो सोचते हैं ये एक पत्थर की मूर्ति है, लोहे की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है कि नहीं, तो भगवान के मूर्ति के सामने आएंगे भी और प्रणाम नहीं करेंगे। और मायावादी का काफी प्रचार है, आचार्य समाधि हैं और कई मायावादी, पर आप शास्त्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हो और ये खास करके इस लीला में प्राप्त करते हो, क्या भगवान नारायण के आचार विग्रह में कोई अंतर नहीं। और इसलिए भगवान राधा गिरधारी, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, श्री श्री गोल्ड ताई, भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, किस लिए, हमें उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। जैसे कि जिन स्थानों में सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान का विग्रह है तो वहां आज जिस दिन हम अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक का क्या अर्थ है, भगवान को स्नान करवाते हैं। भगवान देखो इतने दया दयालु हैं, हमें मौका देते हैं क्या उनका अभिषेक करने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए, उनके लिए भोजन तैयार करने के लिए, उनके लिए किसी प्रकार से सेवा में जुड़ने के लिए और उनका गुणगान करने के लिए, उनके सामने नाचने के लिए, गाने के लिए। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं हमें सेवा में जुड़ने का मौका देने के लिए। तो भगवान राम ने उसे अपनी मूर्ति दे दी और कहा, इस मूर्ति की पूजा करो, इस मूर्ति में और मेरे में कोई अंतर नहीं। सीता रानी को देखो, उन्होंने जितने गहने थे आप अंदाजा में नहीं लगा सकते, उस समय की महारानी में एक के बाद कितने गहने होंगे। सीता रानी ने भी अपने सारे गहने बांट दिए थे ब्राह्मणों को, केवल उन्होंने एक नथुनी रखी अपने लिए, बस सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिए। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, पहले तो ये गहने स्वीकार कर लिया, सीता रानी केवल एक नथुनी रखी अपने लिए, बस और कुछ नहीं। फिर ब्राह्मणों ने यही गहने लेकर वापस लौटा दिया। आप कभी ये उम्मीद कर सकते हो आज आप ब्राह्मणों को अपने गहने बांटो और ब्राह्मण आके कहेंगे, नहीं नहीं वापस ले लो, हमें इतना नहीं चाहिए। तो देखो ब्राह्मणों का तो ये है असली ब्राह्मण। असली ब्राह्मण केवल अपने लिए उतना ही रखता है जितना कि आवश्यक हो। ये नहीं कि हम ब्राह्मण बनते हैं धन कमाने के लिए, और असली ब्राह्मण उतना ही रखता है जितना कि आवश्यक हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि जब वामन देव जी गए थे भारी महाराज के यज्ञशाला में और उन्होंने क्या मांगा, केवल उतना स्थान जाके मैं 3 कदम रख सकूं बस और नहीं। तो बाली महाराज ने कहा, तुम निर्दोष बालक नजर आते हो, धनी व्यक्ति के पास पहुंचकर इतना थोड़ा तो कोई चावल के दाने थोड़ी मांगते हैं, और मांगो मेरे से। तो वामन देव ने कहा कि जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, उसे अगर आप सारे विश्व का धन दोगे तो भी वो संतोष नहीं रहेगा, और जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया वो हर स्थिति में संतोष रहेगा। तो ब्राह्मण जो है, हालांकि सीता रानी ने, सीता देवी जी ने सब गहने सब बांट दिए थे, केवल एक नथुनी रखा था बस, ब्राह्मणों ने सब लेकर वापस लौटा दिया। और जब भगवान राम ने उनसे पूछा कितनी धरती चाहिए, उन्होंने केवल उतना ही ग्रहण किया जितना कि आवश्यक है, उसे अधिक नहीं। तो राम राज्य के समय समाज में हर प्रकार का सुख था, 7 प्रकार के क्लेश जो कि हम सबको भुगतना पड़ता है, उस सब से प्रजा मुक्त थी। वो जो प्रजा थी अत्यंत सुखी थी। प्रभुपाद जी इस अध्याय में कहते हैं कि राम राज्य के समय भी समाज में कर था, और ये जो कर था ये राजा के सुरक्षा के लिए उपयोग नहीं किया जाता था, 1 पैसा भी नहीं उपयोग किया जाता था। ये पूरा कर का उपयोग किया जाता था ब्राह्मणों की सेवा में और समाज की सेवा में, 1 कौड़े भी अपने लिए नहीं। तो राम राज्य के समय प्रजा सुखी थी, और भगवान राम को चिंता सदा ये रहती थी कि समाज में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। और भगवान राम रोज अयोध्या की सड़कों को धोया जाता था, कैसे, गुलाब के पानी के साथ रोज। आज विश्व का सबसे धनी देश अमेरिका, वहां भी उसकी राजधानी है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन की सड़कों को भी कोई साल में 1 बार भी नहीं धोता गुलाब के पानी के साथ। भगवान राम अयोध्या की सड़कों को रोज धुलवाते थे, और ये जो पानी है सड़कों में फेंका जाता था, कैसे, बाल्टियों के द्वारा नहीं, हाथी के सूंड के द्वारा। हाथियों में योग्यता है, पानी लेंगे और बाहर आपको फेंकेंगे शावर के रूप में। तो अयोध्या की सड़कों को रोज साफ किया जाता था इस गुलाब के पानी के साथ, और भगवान राम खुद इस कार्य पर नजर रखते थे, खुद जाकर देखते थे कि सड़कों का साफ, सड़कें ठीक रूप से सफाई हो रही है कि नहीं, ये था उनकी चिंता। दूसरे शब्दों में, जब कोई शासन करता है राजा के रूप में किसी रूप में, उसका कर्तव्य बनता है कि प्रजा को दिव्य ज्ञान दे, और उनको ये भी देखे कि शासन ठीक रूप से हो रहा है। तो भगवान राम के उदाहरण से आप देख सकते हो कि वो खुद रोज देखते थे कि सड़कों को कैसे साफ किया जा रहा है। आज कभी अभी उम्मीद कर सकते हो। और प्रजा के पास पूरी छूट थी किसी समय में महल में आकर अपनी समस्या सुना सकते थे, किसी समय भी। ये नहीं कि आपको 50 सेक्रेटरी के द्वारा जाना पड़ेगा उनका दर्शन लेने के लिए। तो और भगवान राम वेश बदल कर जाते थे क्या, ये देखने के लिए क्या कोई कष्ट तो नहीं है समाज में किसी व्यक्ति को, कोई कठिनाई तो नहीं है? और अगर कोई कठिनाई की सूचना पहुंचती थी तो तुरंत वो हल हो जाता था। तो आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं, आप ये पूछोगे राम राज्य आज के वातावरण में कैसे प्राप्त हो सकता है, हाँ कैसे प्राप्त हो सकता है? तो प्रभुपाद जी भागवतम में समझाते हैं कि वो ही राम राज्य का सुख आज के वातावरण में आप प्राप्त कर सकते हो ये महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। जैसे कि चैत्र युग में राम राज्य बीता था पर वातावरण क्या था, सतयुग का। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में होते हुए भी आप सतयुग का सुख प्राप्त कर सकते हो अगर आप एक हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो। तो आप सबको इस राम नाम के शुभ अवसर पर यह निर्णय करना चाहिए कि हमने आवश्यक ही क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। और अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करोगे तो इसके द्वारा आप अपने आप को सात प्रकार के क्लेशों से बचा सकोगे। कैसे? क्योंकि अगर आप महामंत्र का जाप करोगे उसके द्वारा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के प्रभाव से बचोगे, भगवान के शरणागत होगे। और अगर आप भगवान के शरणागत होगे तो अवश्य ही बिना शंका के भगवान के धाम जाओगे, और भगवान के धाम जाओगे तो फिर किसी प्रकार का कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि रामनवमी के शुभ अवसर पर हम लोग ये हेवन ऑन अर्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, आपने सुना है नाम हेवन ऑन अर्थ। तो इसका अगर हिंदी में अनुवाद किया जाए तो वो बनता है पृथ्वी पर स्वर्ग। तो हम कहोगे प्रभुपाद जी ने पृथ्वी पर स्वर्ग नाम क्यों दिया? क्योंकि स्वर्ग की जब आप चर्चा करो, अगर प्रभुपाद ये नाम देते पृथ्वी पर वैकुंठ तो भक्त लोग तो समझ पाते, पर अभक्त लोग वैकुंठ शब्द को कहां समझेंगे? उनको समझेंगे वैकुंठ कोई शहर है दिल्ली बॉम्बे जैसे, है ना? भक्त लोग वैकुंठ शब्द समझ जाते हैं, पर स्वर्ग शब्द सब समझते हैं, हेवन ऑन अर्थ पृथ्वी पर स्वर्ग। तो प्रभुपाद जी ने ये पृथ्वी पर स्वर्ग नाम क्यों दिया? इसलिए कि स्वर्ग का वातावरण होना चाहिए हर केंद्र में, जहां की एक दूसरे की प्रजल्पा के द्वारा भौतिक चर्चा के द्वारा स्वर्ग में क्या वातावरण होता है, परम भगवान का गुणगान निरंतर है कि नहीं। और जो व्यक्ति भी इस वातावरण में प्रवेश करे उसके हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आना चाहिए, उसे साधु संगत प्राप्त होनी चाहिए जिसके द्वारा वो ये शिक्षा प्राप्त करे, जिसके माध्यम से भगवान के शरणागत हो सके। तो जैसे प्रभुपाद जी ने जू में तो कहा था पृथ्वी पर स्वर्ग, पर असल में प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर केंद्र इस्कॉन का पृथ्वी पर स्वर्ग बने, जहाँ की ऐसा आध्यात्मिक वातावरण हो जहाँ से दिव्य संदेश दिया जाए पूरे समाज के सुख के लिए। तो राम राज्य का सुख आप आज के वातावरण में भी प्राप्त कर सकते हो, कैसे? अगर महामंत्र का उच्चारण करो। तो आप सबको इस शुभ अवसर पर यह निर्णय करना चाहिए कि महामंत्र का उच्चारण अवश्य ही करोगे, सावधानी से करोगे। आपने सुना होगा कई बार आप जब ये महामंत्र का उच्चारण करते हो तो इसमें कृष्णा का नाम भी है राम का नाम भी है। एक समय दो सन्यासियों में जरा डिबेट हो रहा था, ये जो राम शब्द है हरे कृष्ण महामंत्र में इसका वर्णन बालराम जी से है या भगवान राम से? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो ये दोनों सन्यासी गए प्रभुपाद जी के पास पूछने के लिए, व्हाट इज दिस राम रेफर टू, बालराम और राम? प्रभुपाद ने कहा दोनों ठीक हो, राम से आप रामचंद्र जी का भी वर्णन है और बलराम जी का भी वर्णन है। तो हम भगवान राम की भी उपासना करते हैं, हमारे कई केंद्र हैं जैसे बॉम्बे, दिल्ली, वॉशिंगटन, यहाँ की भगवान राम की भी उपासना की जा रही है। तो आप सब रामचंद्र जी की लीलाओं का स्मरण कीजिए। हमने केवल संक्षेप में आपको दो तीन लीलाओं का वर्णन किया है। वहाँ रामचंद्र जी का जो आश्चर्य उदाहरण था उसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे उन्होंने अपने वैराग्य को प्रकट किया। राजगद्दी प्राप्त होने वाली थी, पूरा राजधानी सजी हुई थी, और जब पिता ने कहा छोड़ दो ये सब, छोड़ दो, हमें छोटी सी सुविधा मिलती है और कभी कोई कहे छोड़ दो तो हम इतना तमाशा करते हैं, है कि नहीं? तो जबरदस्ती हमें छोड़ना पड़ता है। पर रामचंद्र जी के वैराग्य को देखो, पूरे विश्व की का राज्य छोड़ दिया, फिर जंगल में गए पिता के आदेश का पालन करने के लिए। यहाँ की अनेक प्रकार की कठिनाइयां सहनी पड़ी, कांटों पर चलना पड़ा, पर उन्होंने सहा। हमें प्रचार के विषय में थोड़ी कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है, हम चिल्ला उठते हैं, है ना, नहीं नहीं हम तो इतनी गर्मी में प्रचार नहीं कर सकते, हमें तो ये कठिनाई इस स्थिति में हम प्रचार नहीं कर सकते। पर रामचंद्र जी स्वयं भगवान थे, उन्होंने अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और किस प्रकार उनको चिंता थी कि उनकी प्रजा में हर व्यक्ति सुखी रहे। तो जैसे रामचंद्र जी ने अपने तीनों भाइयों को भेजा अलग अलग स्थानों में, तुम दक्षिण में जाओ, तुम उत्तर में जाओ, तुम उधर जाओ, तो उसी प्रकार प्रभु जी कहते हैं हम सबको विश्व के हर कोने में जाना चाहिए, क्या महाप्रभु का प्रचार करने के लिए। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो वृंदावन में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो प्रभु जी कहते हैं जाना पड़े जाओ, और क्या करो प्रचार को आगे बढ़ाओ। तो रामनामी वाले शुभ अवसर पर हमें भगवान राम की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, और अगर हम सदा हमारे मन के द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे तो बिना शंका के आप इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी अनेक नियमों का वर्णन करते हैं, पर अंत में कहते हैं कि इन सब नियमों का मूल भाव यह है कि आप सदा कृष्ण का स्मरण करो और कभी कृष्ण को भूलो नहीं। तो आप रामचंद्र जी की लीला, कृष्ण की लीला, चैतन्य महाप्रभु जी की लीला, इनका हमें स्मरण करना चाहिए, और इस प्रकार आपका जीवन जो है सफल होगा। श्री राम नामी उत्सव के हरे
कृष्ण।
आप भक्तों को पता होगा, एक आपके एक प्रभु जी के शिष्य थे राधा कुंज शनिया थे, वो इस समय बहुत बहुत बीमार हैं, और शायद आज शरीर त्याग देंगे वृंदावन में। तो आप लोग सब उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। कल शाम को भीमा प्रभु को फोन आया था कि उनके 24 घंटे और हैं डॉक्टरों के अनुसार जीने के लिए। तो आप जानते हो राधा कुंज, वो यहीं से बीमार
हैं,
तो बहुत बीमार है इस वक्त। आप सब प्रार्थना कर सकते हो, ठीक है।